से आप अंदाजा करें उस शख्स के मेयार का, वो क्यों ये काम कर रहा है, इसके पीछे क्या है। यानी उराफा का एक अजीब अंदाज, अहले बैत अतहार से अकीदत और मोहब्बत का एक अजीब अंदाज है कि वही जुमला जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उन्हें सरचश्मे हयात और अपने आप को वो प्यासा समझते हैं कि जो जिंदगी की हकीकत की तलाश में। उनका अहले बैत से और मासूम से रिश्ता इस किस्म का नजर आता है, इन्हें मुर्दा होना चाहिए। मानी मौल शहीद मुतहरीके के हुसैन अपनी शहादत के बाद जिंदा तर हैं, हुसैन की जिंदगी की दरख्शानी और ताबिंदगी शहादत के बाद ज्यादा हो गई ना कि हुसैन नौजुबिल्ला मुर्दा होगा। कि उराफा का नजरिया ये है अहले बैत के बारे में, और इस जरिए से इस वसीले से वो फैज हासिल करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वो इसी सरचश्मे है आपका फैज। अगर ये ना होता, अगर हमारे पास ये ताल्लुक ना होता तो कुछ ना होता। और एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वो इंसान कि जो ये समझता है कि अली कभी भी अल्लाह के मुकाबले में आ सकते हैं, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं। इसलिए कि खुदा हकीकत है और अली मखलूक और शख्सियत है। कोई भी शय, कोई भी मखलूक, चाहे वो किसी भी दर्जे की हो, कभी भी ऐन हकीकत का मुकाबला कैसे कर सकती है। इन्हें मारिफत खुदावंदी का ये बुनियादी नुकता है, मारिफत इलाहिया का ये बुनियादी नुकता है कि खुदा हकीकत है और खुदा के सिवा जो कुछ भी है वो खुदा की वजह से है और मखलूक है। ये बुनियादी मारिफत खुदा है। तो वो तमाम के तमाम अफराद जो कहते हैं कि या अली या अल्लाह के मुकाबले में आ जाता है, वो खुद खुदा की मारिफत नहीं रखते। ये मुमकिन ही नहीं है। इन्हें शिर्क के हवाले से तो शायद कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अली या मोहम्मद या हुसैन खुदा के मुकाबले में कैसे आ जाते हैं कि वो ऐन हकीकत और ये मखलूक। इन्हें आप ईसाई या नुसैरी दोनों को कहेंगे अहमक, ये बेचारा कुछ नहीं जानता। एक हस्ती कि जो अपने जिस्म से महदूद हो रही है, जो एक जमाने में पैदा हो रही है और एक जमाने में इंतकाल कर रही है, खुदा कैसे हो सकता है। जो महदूद है और जो मखलूक है वो खुदा कैसे हो सकता है। तो ये मसला, यानी कि इंसान जर्रा बराबर भी अगर मारिफत खुदा से बहरामंद है तो ये मसला हरगिज नहीं है इंसान के लिए। इसी वजह से खुदा ने क्या कहा उलुल अलबाब के लिए कि जितने वो ताहूत, ये मसला नहीं है उलुल अलबाब के लिए कि खुदा या गैर खुदा या शिर्क, बल्कि असल मसला ये है कि वो शैतान सरकश जो अल्लाह के बंदों को अपना बंदा बनाना चाहता है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। असल मुसीबत ये है, असल मुसीबत ताहूत की विलायत से बाहर आना है कि जो इंसान साहिब मारिफत है उसके लिए मसाइल नहीं है। वो तो इस बात को समझता है कि ऐन नूर हकीकी खुद खुदा है और ये तमाम के तमाम हजरात मासूमीन उस नूर की किरण और उसका जलवा है। इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आप उस्ताद का हाथ पकड़ते हैं कि उस्ताद आपको इल्म अता करे, आप वहां पर क्यों नहीं कहते कि खुदा अलीम है मुझे इल्म दे दे। वहां उस्ताद के पास क्यों जाते हैं। तो जहां पर उस्ताद के पास जाकर उसकी सोहबत इख्तियार करने में, उससे इल्म हासिल करने में कहीं शिर्क नहीं आता। इसी तरीके से हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि सरचश्मे हयात से वाबस्ता हों, और अगर जो उस सरचश्मे हयात से जो पानी हमारी तरफ बह रहा है उससे इस्तेफादा करना शिर्क जैसा हो जाए। एक मिसाल और मैं मसाइब से मुत्तसिल हो जाऊं कि परवाने को कभी आपने देखा। परवाना किस चीज का आशिक होता है। परवाना शमा का आशिक नहीं होता, रोशनी का आशिक होता है। क्यों, ये बात मैं जुमला क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आज के दौर में कि जब शमे खत्म हो गई और बल्ब आ गए तो क्या परवाने खत्म हो गए। अब वही परवाने जो पहले शमा से चिमटे रहते थे अब बल्ब पे आपको नजर आते हैं। तो परवाना किस चीज की तलाश में है? रोशनी की तलाश में। और क्या परवाने का शमा पर आना और जल जाना और अपने आप को उसमें फना कर देना इश्क शमा कहलाएगा या इश्क रोशनी कहलाएगा? फैसला कीजिए। वो अपने आप को फिदा कर रहा है शमा पर, अपने आप को फिदा कर रहा है शमा पर, लेकिन आशिक उस रोशनी का है जो उस शमा से निकल रही है। तो मुमिन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही हकीकतन किस चीज के आशिक थे? वो नूर ए खुदा जो हुसैन की शख्सियत में रोशन थी, कि वो परवाना, परवाना किस चीज के पीछे जा रहा है? रोशनी के पीछे जा रहा है, शमा नहीं है। लेकिन क्योंकि शमा में वो नूर उसको नजर आ रहा है इसलिए उस पर गिरता है और अपने को उस बजाहिर शमा पर फिदा करता है। तो मोमिनीन मुजाहिदीन ने अपने को बजाहिर इमाम हुसैन पे फिदा किया लेकिन नूर खुदा से बोल जाता है। ये ईमान है, इसमें कहां शिर्क है, कहां शिर्क है? ये तो ऐन ईमान है, ऐन तौहीद है। तौहीद तक पहुंचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं है। क्योंकि वो अफराद आप देखिए कि जो इस तरीके से तौहीद के नारे बुलंद करते हैं वो खुद क्या है? जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस बुनियादी तरीन नुक्ते को तो समझते नहीं है कि हकीकत और शख्सियत का फर्क क्या होता है। इतनी सी बात जिसको समझ में ना आए वो क्या खुदा की मारिफत का दावा करता है? तो अहले करबला, करबला के मुजाहिदीन वो आशिकान थे कि जिनके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिफीन से पलटते हुए फरमाया था कि ये आशिकों के गिरने की जगह है। अजीब जुमला आपने इरशाद फरमाया कि ये वो जगह है कि जहां पर आशिक गिरेंगे, आशिकान खुदा, यानी कि जो नूर खुदा के आशिक हैं और उस शमा पर अपने को परवानावार फिदा कर रहे हैं कि जिसमें नूर खुदा मौजूद है। ये उनकी रविश है, ये उनकी सीरत है, ये उनका तर्ज अमल। करबला के वाकयात में आगे बढ़ते बढ़ते जब अस्हाब व अंसार फिदा हो गए, कुर्बान हो गए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार, भाई, फर्जंद, बेटे, आयज़ा, अक़रबा, औलाद मुस्लिम, औलाद अकीद सब के सब कुर्बान हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा मैदान में खड़े हैं और फरमाते हैं कि क्या कोई है दिफा करने वाला जो हरम रसूल अल्लाह का दिफा करे? कि अब मैं तन्हा हूं, अब मैं अकेला हूं और अब मेरे पीछे हरम रसूल अल्लाह का दिफा करने वाला कोई नहीं। फल मिन बाफिन, क्या कोई दिफा करने वाला है कि जो हरम रसूल अल्लाह का दिफा करे? और उसके बाद एक अजीब जुमला इरशाद फरमाते हैं, हल में मुवाहिदन, तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि नमाज पढ़ो और जो सबसे बुजुर्ग करीम जलवाए तौहीद है उसकी गर्दन पर छुरी चलाओ, इसका नाम तौहीद। हल में मुवाहिदन, क्या कोई ऐसा मुवाहिद है जो खुदा के बारे में, खुदा हमारे बारे में खुदा से डरे? हल में मुवाहिदन यखाफुल्लाह फीना, क्या कोई ऐसा मुवाहिद, कोई तौहीद का मानने वाला है जो हमारे बारे में खुदा का खौफ रखता हो? हल में मुगीसन, क्या कोई हमारी फरियाद को पहुंचने वाला है कि जो हमारी फरियाद रसी करके खुदा से अपने अजर को पाले? अजीब जुमले इमाम अलैहिस्सलाम। और इमाम अलैहिस्सलाम इस अंदाज से इस्तिगासा फरमाते हैं कि आपको अपने पीछे अकब में खैमों से ख्वातीन के गिरिए की आवाज बुलंद होती हुई सुनाई। इमाम अलैहिस्सलाम پلٹ کر خیمے میں آتے ہیں اور اس کے بعد اہل حرم سے کہتے ہیں کہ ابھی اے میری بیویوں ابھی میں زندہ ہوں, لیکن اب حسین چاہتا ہے کہ رخصت آخر کو تم سے اجازت لے. اور امام علیہ السلام جب سب سے رخصت ہو لیتے ہیں تو اس وقت خیمے سے نکلتے وقت ایک 6 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا تم سے بھی میں اجازت لینا چاہتا ہوں. لیکن جب بچے کی حالت پر امام علیہ السلام کی نظر پڑتی کہ آنکھیں اپنے حلقوں میں دھنس چکی ہیں, ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی ہیں اور جسم نقاہت سے لاچار, تو امام فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر قوم اشقیہ کے سامنے جاؤں کہ انہوں نے ہم پر تو رحم نہیں کیا لیکن شاید اس بچے پر یہ خود رحم کر دے. امام علیہ السلام اس فرزند کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے میدان میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قوم اشقیہ, اگر تمہاری نظروں میں حسین گناہگار ہے, اگر تمہاری نگاہوں میں حسین واجب القتل ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں, اس بچے کو سیراب کر دو کہ یہ اب جا بلد ہے. فرملا لعنت اللہ علیہ نے اپنی کمان میں تیر کھینچا اور ان لفظوں کے ساتھ اس تیر کو چھوڑا کہ یا حسین اس تیر کے ذریعے سے اپنے بچے کو سیراب کر دو. وہ تیر آیا, غلو علی اصغر کو پارا کیا اور وہ بچہ اپنے والد کے ہاتھوں پر مبتلے ہو گیا. امام حسین علیہ السلام اس موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں, حضن علی نزل بی, کہ خدا کی قسم یہ بھی میرے لیے آسان, یہ مرحلہ بھی میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے پروردگار یہ بھی تیری نگاہوں کے سامنے, یہ بھی تیری نگاہوں کے سامنے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله.
اصغر ہائے اصغر, اصغر ہائے اصغر, جب دیا